रूत अध्याय दो, अध्याय दो पद एक में नौमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोआज था। एलीमेलेक के पास एक भाई था सगा या रिश्तेदारी में बोआज, जो कि बहुत अमीर था, और वो भी कहता है हमारा भाई एलीमेलेक। रूत अध्याय दो पद दो में मोआबिन रूत ने नौमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। परमेश्वर ने सबके लिए व्यवस्था में कुछ न कुछ साधन रखे हैं। उन दिनों में भी कल्याण के कुछ नियम थे जो मैं समझता हूं कि वो आज के नियमों से ज्यादा अच्छे थे। मुझे दो या थोड़ा बहुत देने जैसे कुछ नहीं था, परंतु कानून था जिसके पास खेत था वो कटाई के समय अपने खेतों में केवल एक बार ही कटाई कर सकता था, दूसरी बार नहीं। और एक बार कटाई करने पर जो कुछ कट जाए वो उसका बाकी सब जो एक कटाई से बच जाता था वो गरीबों के लिए होता था। कोई भी गरीब किसी भी खेत में कटाई के मजदूरों के पीछे जाकर बिन सकता था। इस तरह सारे गरीबों की भलाई के लिए ये नियम था और कोई भी भूखा नहीं रहता था, सबके लिए बहुत होता था। ये एक अच्छा नियम था। आपको अगर खाना चाहिए तो वहां हमेशा खाना होता था, या आप खेतों में जाइए और कटाई के मजदूरों के पीछे पीछे अन्न बिन लीजिए। इसलिए रूत ने नौमी से कहा, मैं बाहर जाती हूं और कटाई मजदूरों के पीछे खेत से बिन कर लाती हूं। रूत अध्याय दो पद तीन में वो जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बिनने लगी, और जिस खेत में वो संयोग से गई थी वो एलीमेलेक के कुटुंबी बोआज का था। ये एक संयोग था, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। संयोग से कुछ नहीं होता। जब हम किसी बात को दूसरी से जोड़ते हैं तो कहते हैं कैसे अजीब इत्तेफाक था, लेकिन जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर होता है और आप परमेश्वर की संतान है तो संयोग प्रश्न ही नहीं उठता है। सब बातों में परमेश्वर का हाथ होता है। जब परमेश्वर हमारे जीवन को चलाता है तब हमारा विचार ये होता है कि परमेश्वर हमें रहस्यमय रीति से परिस्थिति का ज्ञान प्रदान करे जिसमें आप बेहोश हो जाए और आपके चारों ओर धुआं ही धुआं उठने लगे। तब आपको एक आवाज सुनाई दे जो कहती है, उल्टे हाथ की ओर चल। आप चाहते हैं कि परमेश्वर इस प्रकार आपके लिए रहस्य उद्घाटन करे, जबकि वास्तविकता तो यह है कि परमेश्वर प्राकृतिक विधियों द्वारा ही आपकी अगुवाई करता है। आप कहते हैं ये एक संयोग था कि उस पल मैं वहां मौजूद था। पिछले कुछ सप्ताहों से मेरी पत्नी मुझसे एक डॉक्टर के बारे में अपनी चिंता व्यक्त कर रही है, जिसने पिछले साल जब मेरी पत्नी का हाथ इसराइल में टूट गया था बहुत मदद की थी। वो कह रही है मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, बहुत दिनों से उसकी कोई खबर नहीं आई। हमने उसको क्रिसमस की बधाई भेजी थी, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। काश वहां सब कुछ ठीक हो। उसका काम कैसे चल रहा होगा? अगर तुम्हें उसकी कोई खबर मिले तो मुझे बताना। नहीं, मैंने उसकी कोई खबर नहीं सुनी। पता नहीं उसका काम कैसे चल रहा होगा और वे लोग कैसे होंगे। पिछले सप्ताहों से वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। पिछले दिनों मेरे बेटे के चर्च में महिलाओं की एक सभा में मेरी पत्नी को प्रचार करने जाना था और वहां खाना भी था। ऐसे पहले भी हो चुका है। मेरी पत्नी ने सोचा कि वो वहां खाना नहीं खाएगी क्योंकि वहां धूल बहुत होती है। तो वही एक छोटे से रेस्टोरेंट द ब्रेड बास्केट में खाना खाने चली गई। जब वो वहां खाना खा रही थी तो उसने वहां उसी डॉक्टर की पत्नी को देखा। वो उस जगह से गुजर रही थी और उसे बेकरी से कुछ लेने चली आई थी। आपने देखा, ये संयोग है? नहीं, ये अपने आप नहीं हुआ, ये परमेश्वर के द्वारा कराया गया था। परमेश्वर सारे कामों को इस तरह करता है कि सब कुछ सामान्य प्रतीत हो। हम समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर काम कर रहा है। परमेश्वर हमें इतने सामान्य रूप से चलाते हैं। ये एक विचार एक प्रबल इच्छा की तरह या एक प्रेरणा की तरह आता है। मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरा मन मोमो खाने के लिए कर रहा है, ओ मुझे मोमो खाना है। हमें कहां जाना चाहिए? चलो वहां चलते हैं। असल में परमेश्वर सारी परिस्थितियों को एक दूसरे से जोड़ रहा है। आप वहां जाते हैं और परमेश्वर की योजना प्रकट होने लगती है। ये संयोग नहीं होता, परमेश्वर हमें वहां ले जाता है। हर बात में परमेश्वर का हाथ होता है। धर्मी व्यक्ति के कदम परमेश्वर की आज्ञा से चलते हैं और वो परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ता जाता है। अगर आप अपनी सारी बातों में परमेश्वर को पहला स्थान दे तो वो आपको रास्ता दिखाएगा। अब इसे हम अपने तरीके से देखते हैं और कहते हैं, ये एक संयोग था कि वो बोआज के खेत में गई, परंतु असलियत में परमेश्वर उसका हाथ पकड़कर उस खेत में ले गया। वो ये सोचते हुए जा रही होगी, इस दुनिया में मैं किसके खेतों में बिनने जाऊं? ओ ये सब मेरे लिए नया है, मैं यहां किसी जगह को नहीं जानती। उधर कुछ औरतें हैं, मैं उन्हीं के पीछे जाती हूं। और इस तरह परमेश्वर उसको रास्ता दिखा रहा था। अपने रास्ते को साफ करो ताकि परमेश्वर हमारी जिंदगी को चला सके। जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं तो परमेश्वर हमें रास्ता दिखाता है। रोज सुबह बिस्तर से उठने से पहले मैं कहता हूं, परमेश्वर आज ये दिन आपका है, मेरा जीवन आपका है। परमेश्वर आज जो कुछ भी आपने मेरे लिए रखा है, मुझे रास्ता दिखाइए, मेरे जीवन को चलाइए। परमेश्वर मेरे पास ऐसा कुछ कठिन प्लान नहीं है जो तोड़ा ना जा सके। आपने मेरे लिए जो सोचा है वही होने दीजिए। मैं आज आपको आमंत्रित करता हूं। ये बहुत ही उत्साहित होता है क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि हर एक दिन के लिए परमेश्वर के दिमाग में हमारे लिए क्या है। वो सारी परिस्थितियों को बदल सकता है। हम ये देखते हैं, भाई ये बहुत आश्चर्यजनक संयोग है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा नहीं है, परमेश्वर अंत में सारी बातों को परस्पर जोड़ देता है। रूत अध्याय 2:4 में, और बोआज बेतलहेम से आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। यहां हम देखते हैं कि बोआज कितना अच्छा समझदार और धार्मिक व्यक्ति है। याद कीजिए, ये न्यायियों का समय था, ये आत्मिक गिरावट और अविश्वास का समय था, लेकिन यहां एक ऐसा मनुष्य है जो परमेश्वर के साथ चलता है। वो अपने नौकरों से कहता है, प्रभु तुम्हारे साथ रहे। यहां हम देखते हैं कि उसका अपने नौकरों के साथ अच्छा संबंध था और उन्होंने उससे कहा, प्रभु तुझे आशीष दे। इस व्यक्ति के आत्मिक स्वभाव के बारे में और क्या संकेत मिलता है? रूत अध्याय 2:5 से लेकर 12 में हम पढ़ते हैं, तब बोआज ने अपने उस सेवक से जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वो किसकी कन्या है? जो सेवक लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था, उसने उत्तर दिया, वो मोआबिन कन्या है जो नौमी के साथ मोआब देश से लौट आई है। उसने कहा था, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बिन्ने और बाले बटोरने दे। तो वो आई और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। तब बोआस ने रूथ से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे खेत में बिन्ने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। जिस खेत को वे लवती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि तुझसे ना बोले? जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना। तब वो भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? बोआस ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति मरने के पीछे अपनी सास से किया है और तू किस रीति से अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको पहले तू न जानती थी, ये सब मुझे विस्तार से बताया गया है। यहोवा तेरी करनी का फल दे। इसराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। ये कितना सुंदर दृश्य है। वे मिलते हैं और वो रूथ से कहता है, तुम यही इसी खेत में मेरी दासियों के साथ रहना, उनके पीछे पीछे जाना, किसी दूसरे खेत में मत जाना, और जब प्यास लगे तो बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा पानी पीना। वो उसकी करुणा से आश्चर्यचकित हो गई होगी। वो यहां एकदम अनजान थी, अतः वो कहती है, क्या कारण है कि तू मुझ पर इतनी करुणा कर रहा है? मैं तो एक परदेशिन हूं। वो कहता है, मैंने तेरे बारे में सब कुछ सुना है। मैंने नौमी के प्रति तेरी दया के बारे में सुना है। इस नई जगह और यहोवा की शरण में आने के तेरे निर्णय के बारे में मैंने सुना है। प्रभु तेरी करनी का फल दे। इसराइल का प्रभु परमेश्वर, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। अति सुंदर वचन। उस समय के लोग बहुत स्वाभाविक थे, वे बातों को यथार्थ में लेते थे, इसलिए परमेश्वर की भी यथार्थ में तस्वीर दिखती है। एक तस्वीर जो उन्होंने परमेश्वर की बनाई थी, वो एक प्यार करने वाला, रक्षा करने वाला और अपने बच्चों की चिंता करने वाला है, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को प्यार करती और उनकी रक्षा करती है और उनका ख्याल रखती है, ताकि जब कभी कोई खतरा आए तो वो अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा ले। पुराने नियम में परमेश्वर की भी ऐसी ही तस्वीर दिखाई गई है। विश्वासी उसके पंखों के नीचे शरण पाएंगे। मुर्गी की ये तस्वीर आप सब ने अपने चारों ओर देखी होगी कि कैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पालती है, संभालती है, अपने पंखों के आड़ में छुपाती है। ये एक सामान्य सी तस्वीर है। प्रभु तेरी करनी का फल दे। इसराइल का प्रभु परमेश्वर, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। वो परमेश्वर पर भरोसा करती है, उसको देखकर कहती है, रूथ अध्याय 2:13-14 में उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरे दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूं, तो भी तूने अपनी दासी के मन में पैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। फिर खाने के समय बोआस ने उससे कहा, यही आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में बोर। रूत लवले वालों के पास बैठ गई और उसने उसको बुनी हुई बाले दी और वो खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। बोआज उसके प्रति विशेष रुचि प्रकट कर रहा है। उसने उसको खाने के लिए बुलाया और उसके खाने के लिए बुनी हुई बाले दी। उसको दिखा रहा था कि वो वहां सुरक्षित है। रूत अध्याय 2 पद 15 से लेकर पद 23 तक। जब वो बिन्ने को उठी तब बोआज ने अपने जवानों को आज्ञा दी कि उसको फूलों के बीच बीच में भी बिन्ने दो और दोष मत लगाओ यदि वो सीमा पार भी कर जाए, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकालकर गिरा भी दिया करो और उसके बिन्ने के लिए छोड़ दो और उसे घुड़को मत। सो वो सांझ तक खेत में बिनती रही, तब तो कुछ बिन चुकी उसे फटका और वो कोई एपा भर जौ निकला। जब वो उसे उठाकर नगर में गई और उसकी सास ने उसका बिना हुआ देखा और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकालकर अपनी सास को दिया, उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहां बीनती और कहां काम करती थी? धन्य वो हो जिसने तेरी सुधि ली है। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया और कहा कि जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोआज है। नौमी ने अपनी से कहा, वो यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने तो जीवित पर से और ना मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई। फिर नौमी ने उससे कहा, वो पुरुष तो हमारा कुटुंबी है, व्यवस्था के अनुसार छुड़ाने वाला भी, वरन उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। फिर रूत मुआबिन बोली, उसने मुझसे ये भी कहा कि जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी न कर चुके तब तक उन्हीं के संग संग लगी रहे। नौमी ने अपने बहु रूत से कहा, मेरी बेटी ये अच्छा भी है कि तू उसी की दासियों के साथ साथ जाया करे और वे तुझसे दूसरे के खेत में न मिले। इसलिए रूत जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बीनने के लिए बोआज की दासियों के साथ साथ लगी रही और अपनी सास के यहां रहती थी।